एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जिसे हम सब हर पल अनुभव करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। आवाज।
बिल्कुल, मैं तो आज भी हैरान हो जाती हूँ कि कैसे मेरे हेडफोन बाहर के सारे शोर को मतलब पूरी तरह गायब कर देते हैं। क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई गहरा साइंस है?
ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब साइंस में ही छिपा है।
हाँ,
आज हम इसी तरह के सवालों के जवाब माइक गोल्डस्मिथ की किताब साउंड में ढूंढेंगे। ये किताब हमें बताती है कि ध्वनि सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम सुनते हैं, बल्कि ये एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे आसपास की दुनिया को लगातार आकार दे रही है।
बिल्कुल, शहर की भीड़ से लेकर एक शांत कमरे में गूंजती अपनी सांसों तक, हर आवाज के पीछे एक कहानी है, एक विज्ञान है।
बिल्कुल,
तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं।
जरूर।
किसी भी किताब को समझने से पहले उसके लेखक को समझना जरूरी होता है। तो ये माइक गोल्डस्मिथ है कौन?
हाँ, और ये जानना बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो कोई आम विज्ञान लेखक नहीं है।
अच्छा,
उनके पास खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी है, और यही नहीं, वे ब्रिटेन की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में ध्वनिकी मतलब एकॉस्टिक्स विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं।
अरे वाह, मतलब एक तरफ वो तारों और ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहे थे
जी
और दूसरी तरफ आवाज की दुनिया की गहराइयों में उतर रहे थे। ये तो बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है।
बिल्कुल, और यही बात उन्हें खास बनाती है। उनके पास गहरा वैज्ञानिक ज्ञान तो है ही, साथ ही उससे सरल और दिलचस्प तरीके से समझाने की कला भी है। उन्होंने शोर को मापने से लेकर ऑडियो उपकरण डिजाइन करने तक हर चीज पर काम किया है। यही अनुभव उनकी लिखाई को इतना विश्वसनीय और मजेदार बनाता है।
तो अगर इस किताब के मुख्य आइडिया को एक लाइन में बताना हो तो वो क्या होगा?
संक्षेप में कहें तो किताब का मुख्य तर्क ये है कि हमें ध्वनि को सिर्फ सुनने वाली चीज नहीं मानना चाहिए।
अच्छा,
जब हम उसे एक भौतिक तरंग, एक फिजिकल वेव के रूप में समझना शुरू करते हैं तो हमारी दुनिया की समझ पूरी तरह बदल जाती है।
मतलब ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि गिटार से खास धुन कैसे निकलती है या चमगादड़ अंधेरे में बिना टकराए कैसे उड़ लेते हैं।
एकदम सही। या फिर ये कि एक बड़े कॉन्सर्ट हॉल की आवाज एक छोटे से कमरे से इतनी अलग क्यों होती है?
हाँ,
और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको पहले से विज्ञान का ज्ञाता होने की कोई जरूरत नहीं है।
अच्छा,
ये किताब दिखाती है कि ध्वनि एक ऐसा धागा है जो संगीत, भाषा, मेडिकल अल्ट्रासाउंड और यहां तक के भूकंप विज्ञान जैसी बिल्कुल अलग अलग चीजों को एक साथ पिरोता है।
चलिए तो फिर इस धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। किताब की शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से होती है, आखिर ये ध्वनि है क्या?
गोल्डस्मिथ इसे बहुत सरलता से समझाते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, एक मैकेनिकल वेव।
मैकेनिकल वेव,
इसका मतलब है कि ये एक कंपन है जो किसी माध्यम से होकर गुजरता है, जैसे हवा, पानी या कोई ठोस चीज।
अच्छा,
जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड्स हवा के कणों में कंपन पैदा कर रहे हैं और यही कंपन एक लहर की तरह आपके कानों तक पहुंच रहा है।
तो इसी वजह से कहते हैं कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती।
बिल्कुल, क्योंकि वहां तो हवा या कोई दूसरा माध्यम है ही नहीं, तो कंपन आगे बढ़ेगा कैसे?
एग्जैक्टली।
वहां पूरी तरह वैक्यूम है, इसलिए कंपन के लिए कोई कण ही नहीं है। किताब इस तरंग के दो जरूरी गुणों के बारे में बताती है। एक है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी, हाँ।
और दूसरा है आयाम एम्पलीट्यूड।
आवृत्ति का मतलब है कि तरंग एक सेकंड में कितनी तेजी से कंपन कर रही है। हमारा दिमाग इसे सुर यानी पिच की तरह समझता है।
जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ऊंचा सुर। बिल्कुल, और आयाम उस तरंग का आकार या उसकी ताकत है जिसे हमारा दिमाग आवाज की ऊंचाई लाउडनेस की तरह महसूस करता है।
ठीक है, तो हवा में दबाव की एक तरंग है जो हमारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन ये तरंग हमारे दिमाग में एक विचार, एक भावना या एक संगीत कैसे बन जाती है? ये प्रक्रिया तो किसी जादू से कम नहीं लगती।
ये जैविक इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। सफर कुछ ऐसा है, हमारा बाहरी कान आवाज की इन तरंगों को इकट्ठा करता है और कान के पर्दे तक भेजता है। ये तरंगें पर्दे से टकराकर उसे कंपाती हैं।
ठीक है,
इसके बाद बीच के कान में मौजूद तीन बहुत ही छोटी हड्डियां इस कंपन को लगभग 20 गुना तक बढ़ा देती हैं।
20 गुना, मतलब हमारे कान के अंदर ही एक एम्पलीफायर लगा हुआ है। ये तो कमाल है।
हाँ, और फिर ये बढ़ा हुआ कंपन भीतरी कान में जाता है जिसे कॉकलिया कहते हैं। ये घोंगे का आकार का एक अंग है जिसमें
तरल भरा होता है।
कंपन से इस तरल में लहरें बनती हैं और ये लहरें वहाँ मौजूद हजारों छोटे छोटे बालों हेयर सेल्स को झुकाती हैं।
और यहीं पर वो जादू होता है ना?
बिल्कुल, यही वो पल है जब ये मैकेनिकल एनर्जी बिजली के संकेतों मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाती है।
वाह!
और फिर दिमाग इन्हें आवाज के रूप में समझता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प हिस्सा है साइकोअकॉस्टिक्स।
साइकोअकॉस्टिक्स?
जी।
एक मिनट, तो इसका मतलब है कि जो आवाज मेरे कानों में जा रही है और जो आपके कानों में जा रही है, अगर हम दोनों एक ही जगह बैठे हों तब भी हमारा दिमाग उसे थोड़ा अलग ढंग से प्रोसेस कर रहा होगा।
आपने एकदम सही पकड़ा।
सुनना एक ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है।
बिल्कुल, सुनना सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है, हमारा दिमाग सक्रिय रूप से आवाज को समझता है।
कैसे?
ये पता लगाता है कि आवाज किस दिशा से आ रही है, गैर जरूरी शोर को फिल्टर करता है, जैसे भीड़ में किसी एक दोस्त की बात पर ध्यान देना, और आवाज को मतलब देता है।
ये बहुत दिलचस्प है कि हमारा दिमाग कैसे शोर को फिल्टर करता है। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आता है।
पूछिए।
दिमाग ये कैसे तय करता है कि कौन सी आवाज संगीत है और कौन सी शोर?
किताब बताती है कि इसका आधार हमारी पसंद से ज्यादा गणित में छिपा है।
गणित में?
हाँ, संगीत की तरंगों में एक नियमित दोहराया जाने वाला पैटर्न होता है, जबकि शोर की तरंगें अनियमित और बेतरतीब होती हैं।
लेकिन संगीत तो भावनाओं से जुड़ा है, कला से जुड़ा है, उसे सिर्फ गणित के अनुपातों में बांध देना थोड़ा अजीब नहीं लगता?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये उसकी खूबसूरती को कम नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि हमारे ब्रह्मांड की संरचना में ही एक तरह का संगीत छिपा है।
वाह!
हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से इन पैटर्न्स और अनुपातों की ओर आकर्षित होता है। ये कला और विज्ञान का एक खूबसूरत संगम है।
किताब में टिम्बर का भी जिक्र है, मतलब एक ही नोट मान लीजिए सा, जब पियानो पर बजता है तो अलग लगता है। ऐसा क्यों?
इसका कारण है ओवरटोन। जब कोई वाद्य यंत्र एक मुख्य आवृत्ति पैदा करता है तो उसके साथ साथ कई और हल्की उच्च आवृत्तियां भी पैदा होती हैं।
अच्छा।
हर वाद्य यंत्र में इन ओवरटोन का मिश्रण अलग होता है और यही मिश्रण उसे उसका अनोखा रंग या पहचान देता है।
वाह!
तो ये एक शेफ की सीक्रेट रेसिपी जैसा है। मुख्य सामग्री तो वही है, लेकिन ओवरटोन वो खास मसाले हैं जो हर डिश को एक अलग जायका देते हैं।
क्या बढ़िया उपमा है, एकदम सही।
अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने इस अदृश्य आवाज को कैद करना सिखाया।
जी, रिकॉर्डिंग की तकनीक। किताब हमें एडिसन की फोनोग्राफ से, जो मोम पर तरंगों को सचमुच में खुरच कर रिकॉर्ड करता था, से लेकर आज के डिजिटल युग तक का सफर कराती है।
मैं हमेशा सोचती थी कि डिजिटल आवाज कैसे काम करती है, हम एक असली एनालॉग तरंग को वंस और जीरोस में कैसे बदल देते हैं बिना उसकी आत्मा खोए।
हाँ, और ये प्रक्रिया उतनी ही सरल और शानदार है। इसके दो मुख्य चरण हैं। पहला है सैम्पलिंग।
सैम्पलिंग यानी एक सेकंड में हजारों बार उस ध्वनि तरंग को मापना, और दूसरा है क्वांटाइजेशन यानी हर माप को एक संख्या दे देना।
कमाल है। लेकिन किताब उन आवाजों के बारे में भी बताती है जिन्हें हम इंसान सुन ही नहीं सकते।
बिल्कुल, और ये हमारी दुनिया की समझ को और भी बड़ा कर देता है। पहला है अल्ट्रासाउंड।
अल्ट्रासाउंड? हाँ।
ये इतनी ऊंची आवृत्ति की ध्वनि है कि हमारे कान उसे पकड़ ही नहीं सकते। इसका इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग यानी सोनोग्राम में होता है, और चमगादड़ वो इसी का उपयोग करके अंधेरे में शिकार करते हैं।
और इसका उल्टा भी होता है ना, बहुत कम आवृत्ति की आवाजें।
हाँ, उसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये इतनी कम आवृत्ति की ध्वनि है कि ये सैकड़ों मील दूर तक बिना ऊर्जा खोए जा सकती है।
अच्छा।
हाथी और व्हेल जैसे विशाल जानवर एक दूसरे से मीलों दूर तक संवाद करने के लिए इसी इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें बताता है कि हमारी इंद्रियों से परे भी एक पूरी दुनिया है।
तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इस किताब से कुछ बड़े और महत्वपूर्ण विचार क्या निकलते हैं?
पहला और सबसे बड़ा विचार तो यही है कि हर तरह की ध्वनि के पीछे फिजिक्स के सरल नियम हैं। चाहे वो एक चिड़िया की चहचहाट हो या किसी ऑर्केस्ट्रा का संगीत, सबके मूल में एक ही तरंग का सिद्धांत काम करता है।
मेरे लिए दूसरा बड़ा आइडिया सुनने के अनुभव का व्यक्तिपरक होना है, यानी आवाज तो एक ही है पर हमारा दिमाग उसे अपने अपने तरीके से समझता है।
बिल्कुल।
भारत में त्योहारों या बाजारों के शोर को ही ले लीजिए, किसी के लिए वो ऊर्जा और उत्सव का प्रतीक है और किसी के लिए सिरदर्द।
बिल्कुल, हमारा दिमाग ही तय करता है कि क्या संगीत है और क्या शोर।
हाँ।
तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है विज्ञान और कला का गहरा रिश्ता। संगीत सिर्फ भावना नहीं बल्कि गणित और भौतिकी का भी संगम है।
और आखिरी बात, जो मुझे बहुत प्रभावित करती है वो ये है कि हमारी इंद्रियों की दुनिया कितनी सीमित है। अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड का अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि जानवर ऐसी दुनिया में रहते और संवाद करते हैं जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं।
एकदम सही कहा।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए कुछ मुख्य विचारों को साझा करते हैं।
जरूर। पहला विचार है, हर जटिल से जटिल ध्वनि एक साधारण कंपन से शुरू होती है। इस एक तथ्य को समझना भाषण और संगीत से लेकर जेट इंजन की दहाड़ तक सब कुछ समझने का पहला कदम है।
ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी से बड़ी और जटिल चीजों की नींव भी कितनी सरल होती है।
बिल्कुल।
दूसरा विचार, जो मेरे पसंदीदा हिस्सों में से एक है, आप जो सुनते हैं वो ध्वनि नहीं बल्कि आपके मस्तिष्क की उसकी व्याख्या है। कान एक अनुवादक है लेकिन सुनने का असली जादू दिमाग में होता है।
ये साइकोअकॉस्टिक्स के महत्व को बहुत खूबसूरती से बताता है।
हाँ, कि हमारा दिमाग ही असली हीरो है।
और एक आखिरी विचार, संगीत और शोर के बीच का अंतर मनमाना नहीं है, ये गणितीय है। संगीत उन ध्वनियों पर बना है जिनकी तरंगें नियमित होती हैं और जिनके बीच सरल अनुपात होते हैं।
ये विज्ञान और सौंदर्य के बीच की खाई को पाटता है।
बिल्कुल। बताता है कि जिसे हम सुंदर कहते हैं उसके पीछे भी एक तार्किक संरचना होती है।
ये सब कुछ जानना बहुत दिलचस्प है, लेकिन इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महत्व है?
सबसे पहला और जरूरी इस्तेमाल तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़ा है। डेसिबल पैमाने को समझने के बाद ये साफ हो जाता है कि लगातार तेज आवाज में रहना कितना खतरनाक है। ये हमारे कान के अंदर के उन छोटे हेयर सेल्स को स्थायी रूप से नष्ट कर सकता है और वो दोबारा ठीक नहीं होते।
तो अगली बार किसी कॉन्सर्ट में ईयर प्लग का इस्तेमाल करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है।
बिल्कुल। दूसरा है, घर के माहौल को बेहतर बनाने में।
अच्छा, तो इसीलिए बाथरूम में गाते हुए हर कोई किशोर कुमार जैसा महसूस करता है?
हाँ बिल्कुल। उस गूंज को रिवर्बरेशन कहते हैं।
अच्छा।
अगर आपके लिविंग रूम में आवाज ज्यादा गूंजती है तो आप भारी पर्दे या कालीन का इस्तेमाल करके उसे कम कर सकते हैं।
और तीसरा है, तकनीक की बेहतर समझ। अब मुझे समझ आया कि मेरे नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स कैसे काम करते हैं। वे कोई जादू नहीं कर रहे हैं।
नहीं, वे बहुत चालाक विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे बाहर के शोर की ध्वनि तरंग सुनते हैं।
हाँ।
और तुरंत उसकी एक उल्टी यानी विपरीत ध्वनि तरंग पैदा करते हैं। जब ये दोनों तरंगें मिलती हैं तो वे एक दूसरे को रद्द कर देती हैं।
वाह, तो मेरे हेडफोन असल में शोर से लड़ने के लिए और शोर पैदा कर रहे हैं। ये तो कमाल है।
है ना?
इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख मुझे मिली वो ये है कि ध्वनि जैसी साधारण चीज हमें भौतिकी, जीव विज्ञान और कला के गहरे सिद्धांतों से जोड़ती है।
बिल्कुल।
मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात साइकोअकॉस्टिक्स का विचार था कि हमारा मस्तिष्क ही अंतिम कलाकार है जो हमारे लिए ध्वनि की तस्वीर बनाता है। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है।
और मेरे लिए सबसे आकर्षक बात ये थी कि कैसे तरंगों का एक ही सिद्धांत क्वांटम स्तर के कणों से लेकर ब्रह्मांडीय घटनाओं जैसे गुरुत्वाकर्षण तरंगों तक सब कुछ समझाता है।
यह किताब हमें अपने आसपास की दुनिया को और ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि हर आवाज में, चाहे वो चिड़िया का चहचहाना हो या ट्रैफिक का शोर, एक वैज्ञानिक आश्चर्य छिपा है।
ये हमें सिर्फ देखना नहीं बल्कि सुनना भी सिखाती है।
एकदम सही।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।